दौला पुस्तक 14वी लेक्चर नंबर 1 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहून सिद्धे विउत्थसयले अज्जत्त बहित्त बंधनं मुक्के बत्तीये अहम् नमिउं पुनो पुनो बंधनं वोच्चम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें अपना पांचवा ही खंड चल रहा है, जिसका नाम है वर्गणा खंड, और उसमें अभी बंधन अनियोग द्वार की चर्चा चलेगी। 13वीं पुस्तक में वर्गणा खंड ही था, तो उसमें हमने स्पर्श अनुयोग द्वार, कर्म अनुयोग द्वार और प्रकृति अनुयोग द्वार देखे थे। अब यहाँ बंध अनुयोग द्वार की चर्चा चलेगी। हाँ, बंध, बंधन का अर्थ होता है बंध। उसमें बताएंगे बंधन में क्या क्या है, तो बंध भी बताएंगे, बंधनीय जो बंधा जाता है, जिससे बंधन होता है, वो सब बंध विधान, उसकी चर्चा आती है। तो अभी हम ये पृष्ठ संख्या 1 पर है। अभी जो हमने मंगलाचरण देखा था, ये मंगलाचरण का अर्थ देखते हैं। देखो, अज्जत बहित, ये जो ना विरुद्ध सयले, सब पदार्थों का साक्षात्कार करने वाले, साक्षात्कार करने वाले, जानने वाले, और भीतर तथा बाहर के सब बंधनों से मुक्त। अज्जत बहित्थ बंधन उन्मुक्के, उससे उन्मुक्त, उन्मुक्त ऐसे सिद्धों को, सिद्धे बार बार पुनो पुनो भक्ति पूर्वक नमस्कार करके, नमियुम अहम नमियुम कैसे, भक्ति है यानी भक्ति पूर्वक, मैं वोच्छम है ना, क्या बंधनम वोच्छम, यानी उसका अर्थ क्या है, बंधन नामक अनुयोग द्वार का कथन करता हूँ। यहाँ बंधन अनुयोग द्वार की यहाँ से शुरुआत हो जाती है, और आचार्य सिद्धों को नमस्कार करके प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं बंधन नामक अनुयोग द्वार कहूंगा। देखो, थोड़ा हम विषय परिचय को देख के आगे चलते हैं। निकालो पेज नंबर, पहले शुरुआत में ना विषय परिचय मिला। हाँ, दो नंबर का पेज, शुरुआत वाला। बंधन के चार भेद है, मिला। बंध, बंधक, बंधनीय और बंध विधान। यहाँ इस अनुयोग द्वार में बंधक और बंध विधान की सूचना मात्र की है, क्योंकि बंधक का विशेष विचार खुद्दा बंध में। ये खुद्दा बंध क्या था? नहीं, खुद्दा बंध तो क्षुद्र बंध है, महाबंध की तो 7 पुस्तकें अलग, खुद्दा बंध किसको कहेंगे? क्षुद्र बंध कहाँ पड़ा? 7वीं पुस्तक, केवल 7वीं पुस्तक, 7वीं पुस्तक में खुद्दा बंध देखा, और 8वीं में बहुत दिन हुए ना अभी पढ़ के, बंध विचय स्वामित्व देखा था। देखो, फिर से देखो, बंद हुआ क्या फोन? ठीक है। हाँ, विषय परिचय चल रहा है, पुस्तक लाई ना 14वीं। हाँ, देखो इसके बंधन जो है उसके चार भेद बताए, बंध, बंधक, बंधनी और बंध विधान। अब यहाँ बंधक और बंध विधान की सूचना मात्र की है, क्योंकि बंधक का विशेष विचार खुद्दा बंध में सातवीं पुस्तक में हमने किया था और बंध विधान का विशेष विचार महाबंध में किया है। वो महाबंध की पूरी सभी सात पुस्तकें टोटल, शेष दो प्रकार, दो प्रकरण, प्रकार नहीं प्रकरण, अर्थात बंध और बंधनीय का विचार इस अनुयोग द्वार में किया है। इस अनुयोग द्वार में बंधनीय के प्रसंग से बंधनीय ने बंधने योग्य बंधी जाती है बंधनीय वर्गणाओं का विशेष रूप से उहापोह किया गया है, यानी जीव से वो बनती है ना, उसको बंधनीय कहा, बंधक जीव को कहा था, वो पहले उसकी चर्चा हुई थी बंधक के। हमने देखा ना सभी जीव बंधक है, तो कोई अबंधक भी है संसारी में, कौन है अबंधक? चौदहवें गुणस्थान वाले, वो बंधक नहीं है। इस तरह से मार्गणाओं में वगैरह हमने चर्चा की, चौदहवें गुणस्थान वाले बंधक नहीं है, बाकी सब बंधक है। अब अलग अलग प्रकृतियों के लेकर अलग अलग गुणस्थानों की वहां चर्चा की थी हमने। अब यहाँ बंधनीय ने वर्गणाओं का विशेष विचार किया है, इसलिए ही स्पर्श से लेकर यहाँ तक के पूरे प्रकरण की वर्गणाखंड संज्ञा पड़ी है। स्पर्श से लेकर इन्हें अभी तेरहवीं पुस्तक में पहला स्पर्शनानुगम था, फिर कर्म और फिर प्रकृति बंध, प्रकृति अनुयोग द्वार था, तो सबका मिलकर वर्गणाखंड कहा है। अब संक्षेप से इस भाग में वर्णित विषय का उहापोह करते, इस पुस्तक में जो आने वाला है विषय उसकी थोड़ी चर्चा यहाँ पढ़ेंगे हम। बंध के चार भेद है, नाम बंध, स्थापना बंध, द्रव्य बंध और भाव बंध। अभी वो कौन से नए का क्या विषय उस छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद नीचे का पैराग्राफ देखना है। उसमें एक जीव, एक अजीव, नाना जीव, नाना अजीव वगैरह उसके भंग बताएंगे, वो भी हम पढ़ेंगे वहां जाके। फिर उसमें वो नए और निक्षेप लगाते हैं ना, कौन से निक्षेप का, कौन से नए का कौन सा निक्षेप विषय है, फिर उसमें द्रव्य और भाव से भेद से नो आगम, आगम नो आगम वगैरह वगैरह भेद करेंगे। अब यहाँ यानी ये सभी उसमें नो आगम में भी वो शरीरों का बंध उसकी चर्चा करेंगे। हम ये डिटेल में इसे नहीं पढ़ रहे, तो ये तो विस्तार से हमको पढ़ना है। अब तीन नंबर के पेज पर, यानी ये बंध में क्या क्या है, वो बंध में जो निक्षेप बताएंगे उसी की चर्चा है बंधक में। अब बंधक का विशेष विचार खुद्दा बंध में ने सातवीं पुस्तक में ग्यारह अनुयोग द्वारों का अवलंबन लेकर पहले कर आए हैं, इसलिए यहाँ इस विषय की सूचना मात्र दी गई है। अब बंधनीय जीव से पृथक भूत यानी जुदा जो कर्म और नौकर्म स्कंद है उनकी बंधनीय संज्ञा है, यानी कर्म भी बंधे जाते हैं और वो शरीर भी, उसके भी वर्गणाएं बंधी जाती है। वे पुद्गल द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार वेदने योग्य होते हैं, ऐसे होते हुए भी वे स्कंद पर्याय से परिणत होकर ही वेदने योग्य होते, ऐसा नियम क्या कहते हैं, परमाणुओं को नहीं कहेंगे उसको वेदन कर रहे हैं, वो स्कंदों को कहेंगे और वो कर्म रूप से या नौकर्म रूप से पाए जाते तभी कहेंगे। उसमें भी सभी पुद्गल स्कंध वेदन योग्य नहीं होते, किंतु 23 प्रकार की वर्गणाओं में हमने पढ़े थे ना नाम, उसका विस्तार से वर्णन आने वाला है। जो ग्रहण प्रायोग्य वर्गणाएं, ग्रहण प्रायोग्य ने जीव जिसको ग्रहण करता है, कितनी वर्गणाओं को ग्रहण करता है अश्विन भाई? हाँ क्या नहीं, मैंने पूछा कितनी वर्गणाओं को जीव ग्रहण करता है? पांच ही करता है, बाकी वो विश्व में पाई जाती है पर उनका ग्रहण नहीं करता है। हाँ, यानी वो शरीर संबंधी भी जो वर्गणाएं बताएंगे, प्रत्येक शरीर वर्गणा, साधारण शरीर वर्गणा वगैरह, उनको ग्रहण नहीं करता, ग्रहण करने के बाद उसका स्कंद बनता है, उसकी बात, उसकी उसका नाम अलग है। तो जो ग्रहण प्रायोग्य वर्गणाएं हैं, चौथी लाइन बंधनीय की, उनके कर्म और नौकर्म रूप परिणत होने पर ही वेदने योग्य होते। देखो अभी हमारे यहाँ तो कारमान वर्गणा कितनी सब जगह खचोखच पड़ी है, तो फिर कारमान वर्गणा वेदने योग्य कब कहेंगे? वो कर्म रूप परिणत होगी तब। हम अपना शरीर कब कहेंगे? वो आहार वर्गणा शरीर रूप परिणत होगी तब, तब उसको हम कहेंगे वो वेदने योग्य हो जाती है। इसलिए उसके भी अलग अलग अनुयोग द्वारों से उसका विचार करेंगे, वो अभी नाम छोड़ देते हैं। फिर वर्गणाओं के उन्होंने विस्तार से भेद और उसके जो अनुयोग द्वार बताए हैं। मुझे एक बात इसमें से बतानी थी, जो मैंने कल बात की थी ना सप्त धातु की बात, ये कहीं आई है यहाँ पर, पेज नंबर 6 निकाली इसमें से। देखो यहाँ तो साधारणता पहले तो सारा वर्णन किया है कि 12वें गुणस्थान में निगोद राशि की उत्पत्ति कैसी रुकती चली जाती है और जीव अनेक अनेक मरते चले जाते हैं, अधिक अधिक संख्या में मरते हैं। 12वें के अंतिम समय में लास्ट बैच जो वहां उत्पन्न हुई थी वो मरकर निकल जाती है, निगोद ही जाते हैं, ऐसा नहीं, शरीर के आधार से रहने वाली कृमि भी नष्ट होती है, क्योंकि जो कोई पैरासाइट्स कृमि जो कुछ है उनके भी शरीर निगोद से युक्त है। अगर निगोद चले जाए और कृमि या वगैरह अन्य जीव रहे वहां अन्य त्रस जीव तो निगोद से रहित कहाँ हो जाएगा? तो केवली का शरीर निगोद से रहित होता है तो अन्य त्रस जीवों के उससे भी रहित हो जाता है, वो बात पहले बता चुके थे। अब यहाँ नीचे के दो लाइन वहां से पढ़ेंगे, पेज नंबर 6 विषय परिचय का। साधारणता अन्य शास्त्रों में केवली जिन के यानी केवली भगवान के विषय परिचय ले ले आप, लक्ष्मी कौन? अच्छा आपका पेज अलग है क्योंकि हमारी लेफ्ट साइड से शुरुआत होती है। आपका नंबर भेज, नए पुस्तक का नंबर विषय परिचय 5, नीचे से दूसरी लाइन में पढ़ रही थी। अन्य शास्त्रों में केवली जिन के यानी केवली भगवान के शरीर को 7 धातु और उपधातु से रहित परम औदारिक रूप कहा गया है। मैंने बोला था ना वो ऐसा नहीं है करके, और यह भी बतलाया कि केवली के शरीर के नख और केश नहीं बढ़ते। केवली होने के समय शरीर की जो अवस्था रहती है आयु के अंतिम समय तक वही अवस्था बनी रहती है। सो इन सब बातों का रहस्य इस मान्यता में छुपा हुआ है। इसका अर्थ यह नहीं लेना यानी उसका अर्थ यह नहीं लेना कि उनके शरीर में से हड्डी आदि का अभाव हो जाता है। जो चीज जैसी होती है वह वैसी ही बनी रहती है, मात्र उसमें से बादर निगोद जीव और उनके आधारभूत कृमि का अभाव हो जाने से उस प्रकार पुद्गल का संचय मात्र रह जाता है। उदाहरण के लिए दूध लीजिए, गाय के स्तनों से दूध निकालने पर कुछ काल में उसमें जीवोत्पत्ति होने लगती है, पर अग्नि पर अच्छी तरह से तपा लेने पर उसमें कुछ काल तक जीवोत्पत्ति नहीं होती। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह दूध ही नहीं रहता, दूध तो उस अवस्था में भी बना रहता है। इस प्रकार जो बात दूध के विषय में है वही बात केवली जिनके शरीर के और उसकी धातुओं और उपधातुओं के विषय में भी जाननी चाहिए, यानी उसके आधार से रहने वाले निगोद वहां नहीं है, बस इतनी है, धातु भी हो गए उपधातु भी हो गए, ये उसका अर्थ होता है। यानी सप्त धातु से रहित वो परम अवतारी कैसे कहने की पद्धति है, मैंने कल बताया ना हमको जयपुर शिविर में भी ये प्रश्न पूछा था वहां पर सभा में। क्या नहीं होते? अरे सबको होते, केवली के भी होते, यही तो पढ़ रहे अभी हम। वो मान्यता का निषेध कर रहे हैं, उनके धातु भी है। हाँ यानी गृहस्थ अवस्था में। हाँ होते हैं। सप्त धातु का अर्थ क्या? तो उनके शरीर है कि नहीं, हमारे जैसे उनके मनुष्य शरीर है कि नहीं, तो उनके सब कुछ है, रुधिर भी है। वो सफेद होता है वो बात अलग है, सफेद होना बात अलग है, पर उनके भी हड्डी होगी, मांस होगे, वो सब होगे ना, स्नायु होगे, मज्जा होगे, सब हमारे जैसा ही उनका शरीर है। वो तो दूध जैसा सफेद होता है, वो बात उनकी विशेषता है। और बाद में भी जब केवली होते हैं तो सप्त धातु से रहित नहीं होते हैं, उनके शरीर के आधा से रहने वाले बादर निगोद राशि चली जाती है, बस इतना उसका अर्थ है। हाँ बोले न।
तीर्थंकर है, वो तीर्थंकर जब केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तब उनका शरीर जो है वो सप्त धातु से रहित तो होता है, ऐसी जीवों की मान्यता है। तो यहाँ पर उस मान्यता को विरोध कर रहे हैं, यहाँ पर बता रहे कि वो सप्त धातु तो रहेंगे लेकिन वो सप्त धातु एकदम शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उसमें रहने वाले जो निगोदिया जीव है वो निकल जाते हैं। इतना ही नहीं कि दो इंद्रिया आदि जो कोई कृमि, क्योंकि निगोदिया जीव दो इंद्रियों से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों के शरीरों में के आधार से रहते हैं, तो जो अपने पेट में जो कृमि है वो कृमि के साथ निगोदिया जीव भी उनके शरीर के आधार से है, अपने शरीर के आधार से वो अलग है। इस तरह वहां पर ये बताया कि जो केवली भगवान होते हैं वे निगोद के शरीर से मुक्त होते हैं, रहित होते हैं, यानी वहाँ दो इंद्रिया आदि जो कोई कृमि उनके शरीर के आधार से रहे शरीर में रहते वो भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनके सप्त धातु वहाँ है। ख्याल में आया अभी?
ये सप्त धातु शुद्ध है, वो जीवों से रहित हो जाते हैं, ये कहना है। वैसे के वैसे रहते ही जो है ना, वैसे के वैसे का अर्थ उन्होंने यही, वो वैसी बनी रहती है, उस मान्यता का रहस्य इसमें छिपा है, ऐसा जो कहा है उसमें, यानी वहां उनके वो तो निगोद से रहित है, बस इतना ही कहना है उनको। वृद्धावस्था नहीं होते, वो तो केवल ज्ञान का अतिशय बताते हैं। हाँ, अभी वो 8 साल का वो बढ़ेगा कि नहीं वो मैं नहीं कह सकती। हाँ हाँ, क्योंकि वो वृद्धावस्था नहीं होगी, जरा नहीं होगी, परंतु
हाइट
होगी, बढ़ेगी
शरीर का।
नहीं बढ़ेगी तो वो सारे की जिसको हम कहेंगे ना 500 धनुष वाले कैसे बनेंगे? वहाँ तो सबकी 500 धनुष होती है ना हाइट। वहाँ वहाँ पर सारे जो विधेय क्षेत्र के हैं वहाँ तो सबके 500 धनुष वाले हैं, कोई कोई 8 वर्ष में होते हैं ना, वहाँ पर भी होगी नहीं वो नहीं वो ये नहीं, वो बराबर बैठता नहीं है। अभी वो तो जो बताया है उतने ही हम कह सकते अपनी ओर से। हाँ ना ही बढ़े न केश, और यह भी बतलाएं कि नहीं बढ़ते तो इन बातों का रहस्य इन इस मान्यता में छिपा हुआ है। कौन से के धातु और उससे उपधातु से रहित होते हैं, यानी उनके वो देखो उनके हड्डी का अभाव तो है नहीं, क्योंकि वो तो सहनन तो उनके भी है। 13वें गुणस्थान वाले को भी मैंने कल बताया था, अस्थिर अस्थिर नामकर्म का उदय है, तो धातु अपने रूप से रहना फिर अन्य रूप से होना ये कार्य वहां पर भी चल रहा है, यानी शरीर का परिणमन तो होगा कि नहीं होगा।
हाइट तो सभी बढ़ेगी,
एक धातु अन्य रूप से होना ये जो कार्य चलता है, अपने रूप से कुछ काल तक रहता है, फिर वो आगे आगे अन्य रूप से होते होते फिर बाद में वो परमाणु निकल जाते हैं शरीर में से। मान्यता कौन सी? हाँ उसकी बात उन्होंने नहीं लिखी यहाँ पर, बोला नहीं उसके बारे में, होता है। फिर भी आदिनाथ के तो बड़े हुए केश बताए सभी मूर्तियों में। हाँ हाँ, अभी उसके बारे में उन्होंने होते कि नहीं होते, बस वो मान्यता जो उसका ही निषेध किया है, बाकी किसी की चर्चा उन्होंने नहीं की है। और ऐसा भी आता है ना कि वो तो शरीर कपूर जैसे उड़ जाता है, वो मैं कल सोच रही थी, और नख और केश रहते हैं, तो हड्डी बिड्डिया भी निकल जाती है और केवल नख और केश रहते हैं, ये भी अचरज लगता है नहीं? वही बताते हैं ना, फिर उसके
जिसको केश रह जाते
बढ़ते नहीं कहते हाँ तो इसलिए वो नहीं, पर आत्म प्रदेश है परंतु वैसे भी वो सब यानी कपूरवत उड़ जाता है, तो ये तो बढ़े हुए को यानी बढ़ते नहीं ये भी कहते हैं, वो तो कहते हैं ना बाद में वो तो जिसको हाँ जैसे वो तो कृत्रिम शरीर बना के फिर उसके जो कुछ विधि करते हैं वहां पर अग्नि जलाई जाती है। चल अभी उसकी बात छोड़ते हैं, मुझे ये बताना था कल अब हाँ ना ये बाकी वर्गणाओं की बात अब जब आएगी तब हम पढ़ेंगे, मुझे वो पॉइंट बताना था आपको। अभी आते अपने रेगुलर एक नंबर का पेज जहाँ से अभी हमने मंगलाचरण देखा था, एक नंबर के सूत्र से शुरू करते हैं। इस अनुयोग द्वार का नाम ही बंधन अनुयोग द्वार है। बंधने ति चौविहा कम विभाषा, कम विभाषा है सर, बंधो बंधनियम बंध विहाणेति, नीचे जो दूसरा पाठ कम विभाषा बताया है। देखो बंधन ये क्रम के अर्थ में आया है वो, बंधन इस अनुयोग द्वार में बंधन की क्रम से चार प्रकार की विभाषा है। बंध बंधक वो घ दिख रहा है ध करो, बंध बंधक बंधनीय और बंध विधान। बंधना इसका नाम बंधन है, इससे बंध की सिद्धि होती है। जो बांधता है वह बंधक चाहिए ना, बंधना तीति बंधना, एक मिनट वो बांधता लिखा है कि बंधता लिखा है, बांधता है वह बंधन है, जो बांधता है ना बांधने वाला जीव जो है वो बंधक है, इससे बंधक का ग्रहण होता है।
तो यह बंधक करना पड़ेगा?
नहीं नहीं बराबर है, बंधनाति इति बंधनः तदो बंधकानं ग्रहणम्। बंधन को बांधता है इसलिए बंधक का ग्रहण हो जाता है, जो बांधता है वह बंधक हो गया। यानी क्या क्या बांधा उसने, बंधन हुआ उसने, उन्होंने बंधन बांधा तो उसको बंधक कहा, बराबर है। जो बांधा जाता है इस प्रकार कर्म साधन का आश्रय करने पर बंधन शब्द से बंधनीय का ग्रहण होता है। देखो बंधन शब्द से ही चार अर्थ निकलते हैं, बंधना ये बंधन है ना, इन्हें बंध की सिद्धि हुई। बंध पहला नाम शब्द क्या है, बंध। दूसरी बात है बंधन किस अर्थ में लिया, बंधक के अर्थ में,
बंधक के।
वो क्या करता है तो बांधता है इसलिए वो बंधक हुआ। जो बांधा जाता है वो बंधनीय है, यानी बंधन शब्द से ही बंधनीय अर्थ निकला। जिसके द्वारा बांधा जाता है इस प्रकार करण साधन में, करण यानी उसका प्रोसेस, करण साधन में यानी वो क्रिया जो है, बंधन शब्द की सिद्धि करने पर उससे बंध विधान का ग्रहण होता है। विधान है ना उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो विधि है, उसका करण है, साधन है, उसके लिए वहाँ बंध विधान की बात है। इसलिए बंधन का विशेष व्याख्यान क्रम से चार प्रकार का ही होता है, इसी का विशेषार्थ। यहाँ व्युत्पत्ति पूर्वक, व्युत्पत्ति समझते हैं, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ, कौन से धातु से वो शब्द बना, किस तरह से उसकी रचना हुई, तो व्युत्पत्ति, उसको व्युत्पत्ति कहते हैं। व्युत्पत्ति पूर्वक बंधन के चार भेद किए गए हैं, बंध बंधक बंधनी और बंध विधान। कोई किसी से बंधता है इससे बंध की सिद्धि की गई है। जो बांधता है वह बंधक है, और जो
बंधता
है चाहिए, बंधता है वो बंधनीय है, बांधने वाला बंधक और जो बंधा जाता है वो बांधता का बंधता करना वह बंधनीय है। इससे बंधक और बंधनीय की सिद्धि की गई है। जैसे जीव को बंधक कहेंगे और कर्म को बंधनीय कहेंगे, है ना। जब कोई वस्तु बंधती है तो वह किस प्रकार से बनती है, इसके द्वारा बंध विधान की सिद्धि की, किस प्रकार से बनती है, बंध किस प्रकार से हुआ, उसको कहा बंध विधान। इस प्रकार बंधन के चार भेद ही हो सकते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। द्रव्य का द्रव्य के साथ तथा द्रव्य और भाव का क्रम से जो संयोग और समवाय होता है वह बंध कहलाता है। यानी द्रव्य के साथ संयोग होता है और द्रव्य और भाव का समवाय होता है, ये उसका अर्थ है, उसको बंध कहेंगे। द्रव्य और भाव के भेद से भिन्न दो प्रकार के बंध के जो करता है वे बंधक कहलाते हैं। यानी द्रव्य बंध के करता है और भाव बंध के करता है, उसको बंधक कहेंगे। बंध के योग्य पुद्गल द्रव्य बंधनीय कहा जाता है। प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश के भेद से भेद को प्राप्त हुए बंध के भेदों को बंध विधान कहते हैं। इन चार प्रकार के बंधनों में से सर्वप्रथम बंध का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ये जो बंध विधान है ना, वो महाबंध में बताने वाले, जो हमने पढ़ा था पहले, प्रकृति बंध में पहली पुस्तक थी। आगे की मालूम है क्या, भूल गए? दूसरी पुस्तक किसमें है?
स्थिति बंध की।
दूसरी और स्थिति, तीसरी पुस्तक स्थिति बंध की है, चौथी और पांचवी अनुभाग बंध की, और छठी सातवीं प्रदेश बंध की। महाबंध में पहली पुस्तक, आप महाबंध में थी ना, हाँ, पहली पुस्तक प्रकृति बंध की थी। यानी उसमें सारे प्रकृति बंध के जितने अनुयोग द्वार बताए थे ना, उसमें सारे उसके जो प्रकृति के नाम, फिर उसके उसकी संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, अंतर, काल अंतर वगैरह सब, एक जीव की अपेक्षा नाना जीव के, बहुत विस्तार से देखा था। दूसरी और तीसरी पुस्तक स्थिति बंध की प्ररूपणा की है। हर एक में शुरुआत में मूल प्रकृतियों की बात बताई, फिर उत्तर प्रकृतियों की, फिर अनुभाग बंध और फिर प्रदेश बंध, और सब में बहुत सारे अनुयोग द्वार थे ना, चौबीस चौबीस अनुयोग द्वार थे। हाँ, चौथी पांचवी और छठी सातवीं प्रदेश बंध, ये पूरा बंध विधान उसमें आएगा, यहाँ उसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। अब इन चार प्रकार के बंधनों में से सर्वप्रथम बंध का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। यानी वो जो द्रव्य का द्रव्य के साथ जो संयोग या समवाय होता है उसके यहाँ बंध कहा था, तो वो उसके चार उसके निक्षेप बताएंगे अलग अलग। ऊपर पढ़ते हैं, जो सो बंधो नाम सो चौ विहो, नाम बंधो ठवण बंधो दव बंधो भाव बंधो चेदी। बंध के चार भेद हैं, नाम बंध, स्थापना बंध, द्रव्य बंध और भाव बंध। ये जो निक्षेप लगते हैं ना, जैसे हर बार हम निक्षेप लगाते हैं। तीन नंबर का सूत्र, बंध नय विभाषण दाए कौन ओ के बंधे इच्छदी। बंध का नय की अपेक्षा विशेष विचार करने पर, यानी विभाषणा करने ने विशेष विचार करने पर, नय विभाषणा बताए ना, कौन नये, किन बंधों को स्वीकार करता है, यह प्रश्न चिन्ह डालना, ये तीसरा सूत्र हुआ। शंका, निक्षेप का निर्देश करने के बाद उसका निरूपण करना था, ये हमेशा प्रश्न पूछते हैं हर बार, है ना, क्योंकि हमेशा निक्षेपों के नाम बताकर पहले में पहले कौन से नए किसको विषय करता है उसके बाद बताते हैं। किंतु ऐसा न करके पहले बंधन का नए की अपेक्षा विशेष विचार किस लिए किया जाता है? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि नए के स्वरूप को समझे बिना भव्यों को निक्षेप का कथन करने पर वह अनुक्त के समान प्राप्त होता है। यानी कौन से नए की अपेक्षा ये बता रहे हैं वो बात ख्याल में नहीं आती। इसलिए अज्ञान का विनाश करने के लिए पहले बंधन का नए की अपेक्षा विचार किया गया है। यदि वह अज्ञान का विनाश न करे तो उसका और क्या फल हो सकता है? यानी उसका कोई फायदा ही नहीं है। ये जो हम नए और निक्षेपों के द्वारा जो विशेष भेद करके समझाया जाता है वो अज्ञान का विशेष विनाश करने के लिए, संशय विपर्य वगैरह जो है वो नष्ट करने के लिए इसकी चर्चा होती है। अगर वो समझ में ही नहीं आए तो फिर वो अज्ञान चला नहीं जाएगा, अज्ञान दूर नहीं होगा। शंका, यदि ऐसा है तो पहले बंध का नए की अपेक्षा ही विशेष विचार क्यों नहीं किया? तो पहले नए ही बताने थे ना, निक्षेप का नाम पहले बताकर फिर कौन से नए, किसका विषय है, किसको करते हैं, वो क्यों बताते हैं? समाधान, नहीं, क्योंकि निक्षेप का कथन किए बिना उसे आधार बनाकर नए की अपेक्षा विशेष व्याख्यान करना नहीं बन सकता। अगर निक्षेप के नाम ही मालूम नहीं है तो कौन सा नए किस निक्षेप को विषय करता है अगर हम बताएंगे तो पहले निक्षेप के नाम मालूम होने चाहिए। इसलिए पहले नाम बताए फिर कौन सा निक्षेप किस नए का विषय होता है उसकी बात बताएंगे। हमने पहले देखा था ना, हमेशा नए गम संग्रह और व्यवहार है जो सबको विषय करते हैं। रुजु सूत्र किसको नहीं विषय करता? स्थापना को। देखो अभी पढ़ेंगे हम इसमें। इसलिए निक्षेप का निर्देश करने के बाद ही बंध का नए की अपेक्षा विशेष व्याख्यान किया है। अब नैगम व्यवहार संग्रहा सौवे बंधे, नैगम व्यवहार और संग्रह नय सब बंधों को स्वीकार करते। ये सब बंध कौन से हैं लक्ष्मी?
नाम में।
हाँ, कौन से? प्रकृति बंध। हाँ, देखो यहाँ बंध है, इन्हें निक्षेप लेना है। हाँ, नाम बंध, स्थापना बंध, द्रव्य बंधर, भाव बंधर। हाँ देखो, नैगम नये, व्यवहार नये और संग्रह नये सब बंधों को स्वीकार करते। सब बंध यानी वो निक्षेप वाले, चार बताए थे ना, नाम बंध, स्थापना बंध, द्रव्य बंध और भाव बंध। क्योंकि इनके विषय रूप से ये चारों बंध संभव है। क्योंकि चार प्रकार के बंध कहने से हमको वो प्रकृति बंध, प्रदेश बंध याद आते हैं ना, उसकी चर्चा नहीं यहाँ पर, उसकी चर्चा। हाँ, ये निक्षेप की उनकी बात है। यदि कहा जाए कि शुद्ध संग्रह नय में ये चारों निक्षेप संभव नहीं है सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अशुद्ध संग्रह नय की अपेक्षा ये सब निक्षेप उसके विषय बन जाते हैं। तो कौन बताना चाहता है शुद्ध संग्रह क्या होता है और अशुद्ध संग्रह क्या होता है?
आप
बताएंगे। हाँ,
एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ जो संग्रह होता है,
एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ संग्रह नहीं, संग्रह नहीं उसको नहीं कहते। देखो देखो, संग्रह नहीं किसको कहेंगे? जैसे हमने कहा सत या द्रव्य कहा, तो द्रव्य कहा तो छह द्रव्य उसमें आ गए, उसमें कोई भेद नहीं किया। यानी सबसे शुरुआत कहाँ से होती? सत कहने से, सत में सब कुछ आ गया, तो यही शुद्ध संग्रह नहीं है। अभी हम द्रव्यों में हमने जीव कहा, जीव द्रव्य कहा, परंतु जीव द्रव्य कहने से हमारा अभिप्राय क्या था? सभी जीवों को समूह करने का। हमने तो संग्रह किया सभी जीवों का, परंतु हमने अन्य द्रव्यों से जीव द्रव्य को जुदा कहा, तो ये अशुद्ध संग्रह हुआ। हम जीव कहने से उसके अगर हम हमारा भेद पड़ने का प्रयोजन होगा ना, तो हमको व्यवहार कह देते। छह द्रव्यों में से जीव द्रव्य है ऐसा कहेंगे तो वो व्यवहार नहीं होगा। और संसारी वगैरह भेद नहीं करते हुए सभी जीवों को इकट्ठा करने का अभिप्राय होगा तो उसी व्यवहार ने को हम संग्रह नहीं कहेंगे, पर वो अशुद्ध संग्रह हो जाएगा। यानी द्रव्यों में एक विशिष्ट द्रव्य जुदा करना बताना है आपको, क्या सभी जीवों का संग्रह करना है? ये दो अभिप्राय से हमका कर्तन हो सकता है, परंतु वो द्रव्य नहीं रखते, केवल वो सत कहो या द्रव्य कहो कहने से शुद्ध संग्रह नहीं होता है। बाकी आगे वाले जितने हमको जो संग्रह के विषय जितने हैं आगे, वो सारे अशुद्ध कहलाते हैं, समझ में? क्योंकि हमने जीव द्रव्य कहने से दो हमारे प्रयोजन हो सकते हैं। हमको छह द्रव्य में से जीव द्रव्य बताना है तो हमने भेद किया, तो उसको व्यवहार नहीं कहेंगे, पर हमारा वो प्रयोजन नहीं था। हम जीव कहने से हमें संसारी मुक्त से भेद किए बिना सबको इकट्ठा किया, तो उसको हम संग्रह कहेंगे, पर कौन सा संग्रह? अशुद्ध संग्रह। ख्याल में है नहीं ये बात? यही कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि शुद्ध संग्रह में कोई निक्षेप संभव ही नहीं है, क्योंकि शुद्ध कहने से पूरा सबको इकट्ठा है, उसमें निक्षेप वाले भेद भी नहीं होंगे। तो कहते हैं अशुद्ध संग्रह की अपेक्षा सभी निक्षेप उसका विषय बन जाते हैं। फिर शंका, ये तीनों द्रव्यार्थिक नहीं है, क्योंकि द्रव्य को विषय करने वाले हैं, क्योंकि संग्रह में भी द्रव्यों के हमने संग्रह किए, व्यवहार में भी द्रव्यों के हमने भेद किए।
तो शुद्ध संग्रह में निक्षेप होगा ही नहीं,
उसका विषय सत्य बस, उसमें कैसे निक्षेप लगाएंगे?
नाम स्थापना
कुछ नहीं हुए, इसीलिए कहे ना शुद्ध संग्रह में चारों निक्षेप संभव नहीं है। तो कहते अशुद्ध संग्रह की अपेक्षा ये सब निक्षेप उसके विषय बन जाते, यहीं पर बता दिया उन्होंने। फिर शंका दूसरी क्या है, तीनों द्रव्यार्थिक नहीं है, ये पर्यायार्थिक नहीं कौन से है सात में से? पर्यायार्थिक। तो ये तीनों ही द्रव्यार्थिक है, इसलिए इनके विषय रूप से भाव निक्षेप कैसे प्राप्त हो सकता है? भाव निक्षेप में तो उसकी वर्तमान पर्याय को ले लेना है, उस रूप परिणत जीव लेना है, नहीं, क्योंकि व्यंजन पर्याय की अपेक्षा भाव बंध इनका विषय बन जाता है। व्यंजन पर्याय ने लंबे काल तक चलती है ना, इसलिए उसको कह सकते हैं। अब पांच नंबर का सूत्र, उजुसुदो ठवण बंधम नेच्छदि। रुजुसूत्र ने स्थापना बंध को स्वीकार हुआ है, स्वीकार नहीं करता, क्योंकि यह नए पदार्थों की सदृशता को स्वीकार नहीं करता। पर्याय को स्वीकार करने वाला रुजुसूत्र ने है, वो तो ये हमने एक मूर्ति में भगवान की स्थापना की, ये हमारे महावीर भगवान है, वो रुजुसूत्र ने को वो स्वीकार नहीं, ये कह रहे हैं। यदि कहा जाए संकल्पवश एक पदार्थ दूसरे पदार्थ रूप हो जाएगा, सो यह बात भी नहीं, क्योंकि हमने तो संकल्प किया है, एक पदार्थ में हमने दूसरे पदार्थ का संकल्प किया है, परंतु वो उस रूप नहीं हो जाता है, क्योंकि ऐसा मानने पर एक खंभे में संकल्पवश तीन लोक के प्रवेश का प्रसंग प्राप्त होता है। क्या कहा? ये हमने खंभे में कहा, ये लोकाकाश है हमारा, संकल्प किया है ना हमने, अभी लोकाकाश का जो हम रचना सामने बताते हैं, ये लकड़ी की क्या है, चित्र की, हमने कहा यह लोकाकाश है, तो क्या उसमें सारा लोक उसमें आ गया, उस रूप हो गया? तो कहते नहीं, यही कह रहे, स्थापना में केवल संकल्प है, पर संकल्प होने से वो दूसरी वस्तु उसमें प्रवेश नहीं करती है। हमने महावीर भगवान की स्थापना मूर्ति में की, और वह बिल्कुल स्थापना, हम संकल्प ऐसा ही करते कि ये साक्षात वितराग और सर्वज्ञ है, परंतु सिद्धालय में से आकर उसमें एंटर हो गए कि नहीं हो गए, ऐसी मान्यता वाले होते हैं ना, वो हमने पढ़ा श्रीमद जी के कोई भोले भक्त होते हैं ऐसे मूर्ख, तो कहते वो तो महावीर भगवान उनके यहाँ आकर वहां से भोल देते हैं, ऐसी बात होगी कभी? ऐसा लिखा है पुस्तक में उनके। अभी क्या है, ऐसे मूर्ख तो हर जगह मिलते हैं, अभी उससे वो मूल पुरुष का वो नाम बदनाम होता है, अभी क्या करें।
ऐसा लिखा है कि महावीर भगवान उनके हृदय में प्रवेश करते थे और फिर वो सब ये लिखते थे। पुस्तक है, दिखा था आपको।
अभी वो उनको तो मालूम है अपने को क्या मालूम? अभी लिखने वाले और ऐसे कुछ ऐसे उनको लगता है हम श्रीमद जी को उनका बहुत आदर कर रहे हैं, अरे उनको ऐसे शिष्यों के कारण तो वो तो बदनाम होता है नाम उनका। अभी क्या करे इसे हाँ, और जिसका अभ्यास नहीं वो तो उसको मान लेते हैं, ऐसे तो मूर्खों की कहाँ कमी है। देखो और ऐसा ही नहीं, क्योंकि उसमें तीन लोग का सद्भाव नहीं पाया जाता, यानी खंभे में हमने स्थापना कर दी, यानी मान लिया हमने, ऐसा भी होता है ना, हमने कोई वस्तु ये हमारा ज्ञान आवरण कर्म है, हमारा दर्शन आवरण कर्म है, हमने कह दिया, इसमें थोड़े वो ज्ञान आवरण दर्शन आवरण आ गया, समझ में आती है ना बात। ये जो संकल्प होता है स्थापना में, संकल्प होता है, आप वो जो शतरंज खेलती है, आप कहें ये हमारा हाथी है, तो हाथी आ गया क्या उसके अंदर, इस तरह से। अब आगे सद्गुण नाम बंध, नाम बंधम वो बराबर छपा नहीं है, नाम बंधम भाव बंधम च इच्छति, शब्द ने नाम बंध और भाव बंध को स्वीकार करता है, क्योंकि जो रुजु सूत्र शब्द वगैरह जो है एक एक जो उसने स्वीकार किए उसमें आगे वो अपनी भाषा में फिल्टर लगाता है और स्पेसिफिक हो जाता है उसमें। शंका, इन दोनों नयों में कौन से, रुजुसूत्र और शब्द नय में नाम बंध कैसे संभव है, समाधान, नहीं, क्योंकि नाम के बिना इच्छित पदार्थ का कथन नहीं किया जा सकता, इस अपेक्षा नाम बंध को इन दोनों नयों के विषय स्वीकार किया जाता है। किसी वस्तु को बताना है तो हमने उसके कोई फिक्स नाम रखे हैं, तभी तो हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। जो सो नाम बंधो नाम, सो जीवस्य वा अजीवस्य वा, जीवाणुं वा अजीवाणुं वा, जीवस्य च अजीवस्य च, जीवस्य च अजीवाणुं च, जीवाणुं च अजीवस्य च, जीवाणुं च अजीवाणुं च, जस्य नामं कीरति बंधोत्ति सो सवो नाम बंधो नाम। हम किसका नाम रख सकते कि जीव का और अजीव का, अब उसमें कॉम्बिनेशन बताएं, एक जीव एक, पहले सेपरेट रखा, एक जीव एक अजीव, नाना जीव नाना जीव, चार तो ये हो गए। अब एक जीव के साथ अजीव एक और अनेक लिए, जीव एक और अजीव एक और अनेक, फिर जीव अनेक अजीव एक और अनेक, चार ये हो गए, और पहले ओरिजिनल चार वो कैसे हो गए, आठ हो गए भंग। अब यहाँ बताएंगे, नीचे हिंदी में पढ़ते देखो, जो यह नाम बंध है वो इस प्रकार है, एक जीव एक अजीव, बहुत जीव बहुत अजीव, एक जीव और एक अजीव। देखो उसको नंबरिंग करना है तो 1 2 3 4 डालना, एक जीव के लिए एक, दो नंबर पर एक अजीव, तीन नंबर पर बहुत जीव, चार नंबर पर बहुत अजीव। अब यहाँ तो सिंगल सिंगल रखा, अब दो दो के कॉम्बिनेशन लेना है,
एक जीव एक अजीव,
तो पांच में एक जीव और एक अजीव में, इतना पढ़कर बाद में रुकना, यानी यहाँ तो द्विसंयोगी भंग हुआ ना उसका, एक जीव और एक अजीव ये पांच नंबर, फिर छह नंबर एक जीव और बहुत अजीव, फिर सात नंबर पर बहुत जीव और एक अजीव, और फिर आठ नंबर पर बहुत जीव और बहुत अजीव। इनमें से जिसका बंध यह नाम किया जाता है वह सब नाम बंध है, यानी एक जीव का नाम हमने बंध रख दिया, नाम कुछ भी रख सकते हैं ना, हमने सूर्य नाम रखा, किसी का सर्वज्ञ नाम रखा, किसी को कुछ भी नाम रखा, तो किसका रखना है उसके अनुसार इसके इतने भेद कर दिए। नाम की प्रवृत्ति इन आठों में ही होती है, इन्हें नाम रखना किसका, किसी चीज का, वो अजीव भी हो सकती है जीव भी हो सकती है, या उनके कॉम्बिनेशन वाली हो सकती है, क्योंकि इनके बाहर अन्य पदार्थ नहीं पाया जाता। वो टोडरमल जी साहब ने लिखा है ना कि वो अपने बारे में लिखते हैं, टोडरमल जो है तो कहते ये जीव कहीं से मरकर आया और वहां किसी पुद्गल स्कंध के साथ संयोग हुआ और माँ बाप ने इसका नाम टोडरमल रखा, एक जीव और ये पुद्गल स्कंद अनेक जीव शंका इन आठ में प्रवृत्त हुआ। बंध शब्द नाम बंध होता हुआ अपने आप को कैसे प्रकाशित करता है? ये जो बंध शब्द जो है वो अपने आप को कैसे बताता है, ये कहना चाहते हैं। उसका समाधान नहीं, क्योंकि सूर्य मणि और चंद्र आदि में स्व और पर के प्रकाशन की योग्यता पाई जाती है। क्या समझना इससे? सूर्य रात में अंधेरा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, फिर सूर्य सूर्योदय हो गया तो हमें ये सभी चीजें दिखने लगी, तो ये दिखने लगी, पर ये सब चीजें तो प्रकाशित हुई, पर सूर्य ऊपर आया कि नहीं, वो कौन किस कौन से प्रकाश में देखते हो? टॉर्च लगाकर नहीं तो? अरे वो स्वयं प्रकाशित है, तो उसको प्रकाशित करने के लिए अन्य किसी की जरूरत नहीं है। वैसे ही चंद्र है और वैसे मणि यानी जो रत्न होते हैं उनका अपना प्रकाश होता है, उनके प्रकाश में अन्य चीजें दिखती है और वो स्वयं तो प्रकाशित तो है ही है। ऐसे शब्द जो है वो शब्द जिसके लिए हमने माने थे शक्कर, ये शब्द है, वो शक्कर कहने से वो शब्द भी प्रकाशित हो रहा है और वो शक्कर नाम का पदार्थ भी हमको समझ में आ रहा है। इसके लिए शब्द को क्या कहते हैं?
स्वपर
प्रकाश, वो वाचक होता है ना। देखो आशय यह है कि जैसे सूर्य आदि स्व पर प्रकाशक होते हैं, वैसे नाम शब्द भी स्व पर प्रकाशक है, क्योंकि किसी चीज का तो हमने नाम रखा है, इसलिए वो चीज को भी बताती है, अपने नाम को भी बताती है। अब जो सो ठवण बंधो नाम सो दुबी हो सभाव ठवण ठवणा नहीं ठवण बंधो चेव असभाव ठवण बंधो चेव। ठवण लिखा है उन्होंने, नीचे नीचे ठवण लिखा है,
ठवण बंधो हमने टिक निकाला था।
स्थापना बंध दो प्रकार का है, क्योंकि ठवण बंधो बताया था ना उन्होंने, सद्भाव स्थापना बंध और असद्भाव स्थापना बंध। हमने उसी को तदाकार और अतदाकार ऐसा भी कहते हैं। सद्भाव स्थापना बंध और असद्भाव स्थापना बंध से वो दिखता है, बंध बराबर वो दिख रहा है ना, जुदा कोई तीसरा स्थापना बंध नहीं पाया जाता, इसलिए स्थापना बंध दो प्रकार का ही होता है। शंका स्थापना बंध किसे कहते हैं? समाधान अन्य बंध में अन्य बंध की वह यह है, इस प्रकार बुद्धि से स्थापना करना स्थापना बंध है। आकृति वाले पदार्थ में सद्भाव स्थापना होती है और आकृति रहित पदार्थ में असद्भाव स्थापना होती है, जिसको हम तदाकार और अतदाकार भी कहते हैं। इन्होंने अन्य बंध में अन्य बंध की स्थापना बताई है, इन्हें केवल किसी पदार्थ में बंध की स्थापना नहीं की, अन्य बंध में अन्य बंध की स्थापना बताई। अब आगे बढ़ेंगे पांच नंबर के पेज पर। जो सो सभाव असभाव ठवण बंधो नाम तस्स इमो निर्देशो कट्ठकम्मेषु वा चित्तकम्मेषु वा पोत्तकम्मेषु वा लेप्पकम्मेषु वा लेणकम्मेषु वा शेलकम्मेषु वा गृहकम्मेषु वा भित्तिकम्मेषु वा दन्तकम्मेषु वा भिण्डकम्मेषु वा अखो वा वराडवो वा जे चामन्ने एवं आदिया सभाव असभाव ठवणाए ठविज्यदि बंधोत्ति सो सौवो सभाव असभाव ठवण बंधो नाम। हमेशा ही हमने जो जो स्थापना की बात की है पहली पुस्तक से लेकर अब तक, तो ये सब भी पूरी लिस्ट आती है उसके में, किसमें किसमें स्थापना हो सकती है। जो वह सद्भाव स्थापना बंध और असद्भाव स्थापना बंध है उसका निर्देश इस प्रकार है। काष्ठ कर्मों में, पोत कर्मों में, लेप्य कर्मों में, लयन कर्मों में, शैल कर्मों में, ग्रह कर्मों में, भित्ति कर्मों में, दंत कर्मों में, भेंड कर्मों में तथा अक्षया कौड़ी इनको आदि लेकर और दूसरे पदार्थ अभेद स्वरूप से सद्भाव स्थापना तथा असद्भाव स्थापना में यह बंध है इस रूप से स्थापित किए जाते हैं। वह सब सद्भाव स्थापना बंध और असद्भाव स्थापना बंध है। यानी किसी चीज में हमने कहा ये बंध है तो इसको हम कहेंगे वो तो स्थापना बंध। काष्ठ कर्मों में, पोत कर्मों में लिखा है, चित्त कर्म रह गया है। हाँ, ये पुराने पुस्तक में चित्र कर्म कहो क्योंकि ऊपर कठ कर्म और चित्त कर्म लिखा है ना, नीचे अर्थ करते समय रह गया है। अच्छा है आपका ध्यान गया, हमारा नहीं गया था। चित्र कर्म का हिंदी सेकंड लाइन काष्ठ कर्मों में, उसके बाद चित्र कर्मों में, बराबर। बाकी तो बराबर है। अच्छा, ये बंध की स्थापना किस रूप से करते हैं वो अभी यहाँ बता रहे। श्री पर्णी, खैर और साग, काष्ठ आदि में, ये वृक्षों के नाम हैं और उनके लकड़ियों में ये कुछ उसमें जिसको हम शिल्प बना सकते हैं। आदि में चक्रबंध, मुरज बंध, विद्याधर बंध, नागपाश बंध और संसार वास बंध आदि की तदाकार स्थापना करना सद्भाव स्थापना बंध कहलाता है। इन बंधों की उन श्रीपर्णी आदि काष्ठों में अतदाकार स्थापना करना वह असद्भाव स्थापना बंध कहलाता है। यानी उनके विशिष्ट कुछ रचनाएं होती है, वैसे स्थापना करेंगे वो तदाकार, और कैसे भी करके उसको नाम दिया वो अतदाकार। चित्रकार रंग विशेषों से जो चित्र बनाते हैं वह चित्र कर्म कहलाते हैं। वस्त्रों में पाण, सालिय और कोसद्ध आदि बुनकरों के द्वारा बुनने रूप क्रिया से जो आकार बनाए जाते हैं या छिपा उन पर जो आकार बनाते हैं वे पोत कर्म कहलाते हैं। क्या कहते हैं? ये जो बुनकर देखे हाथ मार्ग पे देखते हैं तो वस्त्रों के धागों में ही वो आकार बनाते हैं, जैसे साड़ी के जो पहलू होते हैं या कहीं तो उसमें मोर या कोई पत्ते या आम जैसे आकार बनाते हैं, वो सब पोत कर्म लिया। या दूसरे छिपा उन पर जो आकार बनाते हैं, या आपने वो भी देखा होगा, वो तो जयपुर के प्रिंट्स आते हैं ना, उनका जो वैसा छापा होता है ऐसे उस पर
छापते हैं,
वो छापते हैं उसको
प्रिंटिंग।
पहले के जमाने में वो पद्धति थी, अभी आजकल बड़े बड़े मशीनों के द्वारा बना स्क्रीन प्रिंटिंग। हाँ, वो करते हुए देखा है कभी? नहीं देखा।
टेबल पे वो
ऐसे इतना बड़ा होता है उसका,
उनके डाई बनाते और उसको
तो ऐसे वो डाई में दुबा दुबा के ऐसे। स्कूल में हम भी ऐसे करते थे ना, नहीं समझे? स्कूल में सिखाते ना ऐसे कोई, हाँ ये स्टैम्प बनाकर करना, रबर स्टैम्प तो अलग बात है, कुछ भी ड्राइंग में कोई ऐसा वस्त्र को भी ऐसा कर लो उसमें डिब्बा डुब्बा, या वो हमको देते थे भिंडी, हाँ वो कट करना और वो डुबा डुबा के उसका आकार वो छापना, शेप बनाकर वो वस्त्र में छापना। अच्छा करते, हाँ वो स्कूल में तो सिखाते ही हैं इसे अलग अलग टाइप। लेप्य वो पोतकर्म, लेप्यकार लेपनकर जो आकार बनाते हैं वो लेप्य कर्म कहलाते हैं। पत्थर फोड़ा पर्वतों में जो आकार घटित करते हैं वह लयन कर्म कहते हैं। पत्थर फोड़ा नहीं, पत्थर फोड़ने वाले पर्वतों में आकर वो लेनी जिसको है ना, कैलाश जो अजंठा एलोरा में जो एलोरा की जो है वो कैसे पत्थर फोड़ के बनाए हैं, वही छिन्न शिलाओं में जो आकार घटित करते वह शैल कर्म कहलाते। यानी जो पत्थर जो पर्वत से जुदा हुआ है उसमें जो आकार बनाएंगे, भले वो किसी शिवाजी महाराज का हो या अन्य किसी का हो, भगवान की मूर्ति हो। मृत्तिका पिंड के द्वारा प्रासादों में जो आकार घटित करते हैं वे ग्रह कर्म कहलाते हैं। इन्हें पहले के प्रासादों में मिट्टी के द्वारा वो कुछ आकार बनाते थे, ग्रहों में भी आकार बनाते थे, वो ग्रह कर्म है। पहले के जमाने में मिट्टी के घर होते थे पर उसमें भी बहुत सारे आकार, जैसे आप ऐसे जो कोनाडे कहते थे, देवड़ी क्या कहते थे, दीवार में मैरब वगैरह ऐसे बनाते थे ना,
दीवार का शेपी,
खम्बे भी
कुछ,
हाँ 3-3 फुट की दीवारें होती थी तो उसमें ऐसे अंदर रखने के लिए ऐसे खाचे बना दिए जाते थे।
गोखला
क्या पार्टी में क्या बनाए अभी उसको हाँ कोई जैसे अभी ये जो यहाँ मैरब जैसा बनाए, हाँ गांव में तो होता ही है, वो सारे ग्रह कर्म में चले जाएंगे। उसी से दीवारों में जो आकार बनाए जाते हैं वे भित्ति कर्म कहलाते हैं। ये दीवारों में बनाए या अन्य बीच में बनाएंगे अलग अलग। हाथी के दांतों में जो आकार बनाए जाते हैं वे दंत कर्म कहलाते हैं। भेंडों से जो आकार बनाए जाते हैं वो भेंड कर्म कहलाते हैं। वो भेंड नाम का ऐसा सफेद आता है लाइट, आजकल वो थर्मोकोल से बनाते हैं, पहले तो भेंड वो वनस्पति है, उसके ऊपर छाल पातली होती है, अंदर बहुत ऐसा जाड़ा सफेद होता है और उसमें से बहुत आकार बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं उसमें से। ये दसों ही कर्म देशामर्शक है। देशामर्शक यानी फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के तौर पर बताएं। अभी आप अनेक चीजें बनाते हैं किसी किसी वस्तुओं में से, इससे पत्र कर्म, भृंग कर्म, तलवत्त यानी आभूषण कर्म, तालीपत्र कर्म, भोजपत्र कर्म, सीने का कर्म और मणि विज्ञान कर्म आदि को ग्रहण करना चाहिए। अलग अलग जो चीज़ें बनाते हैं वो मणियों से भी बनाते हैं और जो वस्त्रों को सिला कर भी बनाते हैं इस तरह से। इन कर्मों में तदाकार स्वरूप से बंध की स्थापना करना सद्भाव स्थापना है और अतदाकार रूप से बंध की स्थापना करना असद्भाव स्थापना बंध है। शंका, इनका देशामर्शक
पना
स्थापना नहीं पना, देशामर्शक पना कैसे जाना जाता है? देशामसीयत्तम तो कहते हैं समाधान, सूत्र में आगे कहे जाने वाले एवं आदि यानी इसी प्रकार इस वचन से जाना जाता है। अक्ष पासे का नाम है और वराटक कौड़ी का नाम है। पासा समझते हैं ना, वो चौकोनी होता है वो पासा, हाँ, और कौड़ी का भी दान देता है तो वो कौड़ी कहते हैं, वराटक। ये दोनों ही वचन असद्भाव स्थापना के सूचक है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, सूत्र में अक्षे सुवा वराड़े सुवा इस प्रकार सप्तम्यंत वचन का निर्देश नहीं किया है, इससे जाना जाता है कि ये दोनों वचन असद्भाव स्थापना के सूचक है। देखो निकालो सूत्र, निकालो देखो, पहले तो 5 नंबर का पेज पर है, पहले सब है ना, कठ कम्मेसु चित्त कम्मेसु, सु जाने वो मैं लगाया
सप्तम,
हिंदी में देखो काष्ठ कर्मों में, चित्र कर्मों में, मैं लगाया सब जगह, वो सप्तमी विभक्ति लगाई। और फिर तीसरी लाइन में हिंदी के तथा अक्षर कौड़ी इनको आदि लेकर कहा, उनमें नहीं कहा, समझ में है ना? तो ये बाकी सब सद्भाव स्थापना है और ये बाकी दो है वो असद्भाव स्थापना के उदाहरण उन्होंने दे दिए। इनमें या ये आगे पढ़ रही हूँ छह पेज पर, इनमें या ए अमा अर्थात अभेद रूप से स्थापना अर्थात बुद्धि में बंध इस प्रकार स्थापित किए जाते हैं, इसलिए यह सब स्थापना बंध कहलाता है। शंका, स्थापना शब्द बुद्धि का वाचक है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? यह अपने मन में संकल्प किया है यानी बुद्धि में लिया है, वो कैसे जाना जाता है? समाधान, धरणी धारणी स्थापना कोष्ठा और प्रतिष्ठा ये बुद्धि के नाम है, इस सूत्र से जाना जाता है। विशेषार्थ, यहाँ सद्भाव और असद्भाव रूप दोनों प्रकार के स्थापना बंध की चर्चा की गई है। स्थापना एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में होती है, जिसमें स्थापना की जाती है यदि वह तदाकार होता है तो वह सद्भाव स्थापना कहलाती है, यानी उसी आकार के पदार्थ में उसकी स्थापना की, और यदि अतदाकार होता है तो वह असद्भाव स्थापना कहलाती है। बुद्धि से यह वह ही है ऐसा एकत्व स्थापित करके स्थापना की जाती है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। बुद्धि में हमने उसको वही मान लिया है, बस इतना ही। अब सात नंबर के पृष्ठ पर आना। जो सो दव बंधो नाम सो थप्पो द्रव्य बंध स्थगित किया जाता है, शंका कहते किस लिए स्थगित किया जाता है? स्थापित नहीं, स्थगित चाहिए। स्थगित यानी उसको रोक कर आने के बाद पहले बताए, वो वहां क्या लिखा है? स्थगित स्थगित, हाँ। किस लिए स्थगित किया जाता है? ऊपर बताए ना, थप्पो किमठम थप्पो की रदी, किस लिए ठप्पो किया उसको? समाधान, क्योंकि आगे उसका बहुत वर्णन करने वाले हैं, नहीं समझे? जिसका विस्तार है वो बाद में बताएंगे, पहले शॉर्ट को पटा देते हैं। जैसे हम प्रकृतियों के नाम याद करते हैं, साता असाता कहते तो दो भेद है, हा? तो आयु के चार है, नाम कर्मों को थप्पो करते हैं, फिर गोत्र के दो बताते हैं, फिर नाम कर्म के 93 बताते हैं, ऐसा। इसलिए भाव बंध का अधिक पहले वर्णन करेंगे। जो सो भाव बंधो नाम सो दुवी हो आगम दो भाव बंधो चेव नो आगम दो भाव बंधो चेव। ये निक्षेपों के नाम तो पहले से हम हर कोई भी विषय पर लगाते हैं, तो यही नाम स्थापना द्रव्य भाव ऐसे होते हैं, फिर वो द्रव्य के भी और भाव के भी आगम नो आगम दो भेद करते हैं, फिर उसके और अनेक भेद करते हैं। भाव बंध को पहले लिया, भाव बंध दो प्रकार का है, आगम भाव बंध ऊपर लिखा ना, आगम दो भाव बंधो चेव नो आगम दो भाव बंधो चेव, आगम भाव बंध और नो आगम भाव बंध। इस प्रकार भाव बंध दो ही प्रकार का होता है, क्योंकि आगम भाव और नो आगम भाव से अतिरिक्त अन्य भाव नहीं पाया जाता। भाव ने उस रूप परिणत वाली बात लेनी है,
उपयोग से।
हाँ, जो सो आगम दो भाव बंधो नाम तस्स इमो निर्देशो ठिदम जिदम परिजिदम वायणोवगदम सुत्त समम अर्थ समम गंथ समम नाम समम घोष समम। ये बात अभी इसमें भी चल रही है, द्रव्य संग्रह में भी आई है ना। पहले में ये प्रकार बताएंगे, फिर हरेक में वाचना वगैरह पृछना ये लगाएंगे। पढ़ती हूँ, फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। जा तथ्य वायणा वा पुच्छना वा परिच्छना वा पर्यठना वा अणुपहना वा थय थुदी धम्म कहा वा जे चामन्ने एवं आदिया आदि एक्सेट्रा वजोगा भावेत्ति कट्टू जावदिया वजुत्ता भावा सो सवो आगमदो भाव बंधो नाम। जो आगम भाव बंध है उसका निर्देश इस प्रकार है, ये आगम नौ प्रकार का बताया है, कौन सा? स्थित जित परिजित वाचनोपगत सूत्र सम अर्थ सम ग्रंथ सम नाम सम और घोष सम। ये तो आगम बताए, इनके विषय में अब उसका क्या क्या करना, वाचना पृच्छना प्रतिच्छना परिवर्तना अनुप्रेक्षणा स्तव स्तुति धर्मकथा तथा इनसे लेकर जो अन्य उपयोग है आदि एक्सेट्रा में उसको ले लेना। उनमें भाव रूप से जितने उपयुक्त भाव है वे सब आगम भाव बंध है। अब इसका विशेष विस्तार से बताएंगे। स्थित जित परिजित वाचनोपगत सूत्र सम अर्थ सम ग्रंथ सम नाम सम और घोष सम यह नौ प्रकार का आगम है। शंका, एक आगम के नौ भेद कैसे हो जाते हैं? समाधान, लक्षण के भेद से एक आगम के नौ भेद हो जाते हैं। वह लक्षण कौन सा है? वे नौ प्रकार के आगम की यहाँ चर्चा करेंगे। पेज नंबर 7 पर है ना। इस सबको स्वाध्याय में वो बात आई थी, ये आगम का अभ्यास में ये सब बातें, नौ प्रकार के आगम और उसमें क्या क्या करना है, वाचना पूछना वगैरह। देखो अभी हर एक की डेफिनेशन बताएंगे, ये क्या क्या लक्षण होते हैं, कौन सा लक्षण है। समाधान कहते हैं अवधारण मात्र की स्थित संज्ञा है, अवधारण करना, जिसने 12 ही अंगों को अवधारित कर लिया है वह साधु स्थित श्रुत ज्ञान है। उस साधु को, क्योंकि यहाँ उस पर उस रूप परिणत जीव को लिया है ना, उसको स्थित कहा। इसकी स्थित संज्ञा क्यों है? समाधान, अन्यत्र इसका संचार नहीं होता इससे उसकी स्थित संज्ञा है। समाधान, अन्यत्र इसका संचार नहीं होता, सॉरी ये हो गया स्थित। शंका, ऐसा भी क्यों है? समाधान, क्योंकि अन्य के साधकतम रूप से करण होने की शक्ति नहीं पाई जाती। करण है उसका साधन, जो जाने हुए अर्थ को धीरे धीरे विचार कर कहने के लिए समर्थ होता है वह जित नाम का श्रुत ज्ञान है। जो 12 अंगों को जानकर बिना स्खलन के जाने हुए अर्थ को कहने के लिए समर्थ होता है वह परिजित नाम का श्रुत ज्ञान है। देखो ये स्थित हुआ,
जित परिजित,
फिर जित हुआ, अब परिजित हुआ, ये दोनों ही आगम अन्य को ज्ञान कराने में समर्थ नहीं है क्योंकि इनमें दक्षता नहीं पाई जाती। जो 12 अंगों को जानकर अन्य के लिए उनका व्याख्यान करने में समर्थ है वह वाचनोपगत नाम का आगम है।
क्या को ये जीव को लिया है ना?
जीव को लिया। शंका, वाचना किसे कहते हैं? शिष्यों को पढ़ाना इसका नाम वाचना है। फिर सूत्र का अर्थ श्रुत केवली है, उसके समान जो श्रुत ज्ञान होता है वह सूत्र सम श्रुत ज्ञान है, ये ज्ञान को भी नाम दिया। अथवा सूत्र का अर्थ 12 प्रकार का अंग रूप शब्दागम है, यानी शब्द आगम जो उसकी जो रचना है शाब्दिक उसको भी कहते हैं। आचार्य के उपदेश के बिना सूत्र से ही जो श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है वह सूत्र सम श्रुत ज्ञान है, यानी सूत्रों से ही अर्थ ख्याल में आ गया। आचार्य ने उपदेश करके उसको विस्तार से नहीं समझाया फिर भी वो सूत्र सम श्रुत ज्ञान से वो जाना जाता है। फिर अर्थ, गणधर देव का नाम है क्योंकि वे आगम सूत्र के बिना सकल श्रुत ज्ञान रूप पर्याय से परिणत रहते हैं।
ये समझ में नहीं आया, आगम सूत्र के बिना?
आगम सूत्र तो उन्होंने बनाए, गणधर देव ने तो ओमकार ध्वनि सुनी।
अच्छा।
सूत्र उन्होंने नहीं सुने थे।
अच्छा।
हाँ, उन्होंने अपने शुद्ध ज्ञान से या क्या कहा देखो, उनको अर्थ कहा, क्योंकि आगम सूत्र के बिना सकल शुद्ध ज्ञान रूप पर्याय से परिणत रहते हैं। यानी सूत्र रूप उन्होंने उपदेश सुना और बाद में वो द्वादशांग ज्ञानी हुए, ऐसा नहीं है, ये कह रहे
हैं।
इनके समान जो शुद्ध ज्ञान होता है वह अर्थ सम शुद्ध ज्ञान है, अथवा अर्थ बीज पद को कहते हैं। इससे जो समस्त शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है वह अर्थ ग्रंथ सम नहीं है, अर्थ सम शुद्ध ज्ञान है। वहां हमारे में ग्रंथ शब्द छपा है, वो अर्थ सम करना, आप में क्या है, अर्थ सम लिखा है ना, यानी वो बीज पद को कहते हैं, अथवा अर्थ बीज पद को कहते हैं। ओमकार ध्वनि में से बीज पद को सुनकर उन्होंने वो समस्त ग्रहण किया द्वादशांग का, इसलिए उसको अर्थ सम कहते हैं। आचार्यों के उपदेश को ग्रंथ कहते हैं, इसके समान जो शुद्ध ज्ञान होता है वह ग्रंथ सम शुद्ध ज्ञान है। यानी आचार्य के पाद मूल में 12 अंग रूप शब्दागम को सुनकर, सुनकर की बात है ना, यहाँ पढ़कर की बात नहीं, सुनकर, पहले तो सुनने की इच्छा नहीं, मत जो शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है वह ग्रंथ सम शुद्ध ज्ञान है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। आचार्य के पाद मूल में 12 अंग रूप शब्दागम को सुनकर जिसके कथन करने योग्य अर्थ को विषय करने वाला ही श्रुत ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह नाम सम श्रुत ज्ञान है। क्या कहा, यानी 12 अंग रूप शब्दागम को सुना और उसमें कथन करने योग्य अर्थ को जानने वाला जो है वो नाम सम हुआ। अब 12 अंग रूप शब्दागम को सुनने वाले, जिसके सुने हुए अर्थ से संबंध रखने वाले पदार्थ को विषय करने वाला श्रुत ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह घोष सम श्रुत ज्ञान है। इन्हें आगम ही उन्होंने पदार्थ को जान लिया है, वो घोष सम होता है। इस प्रकार 9 प्रकार के श्रुत ज्ञान का कथन किया, या अलग अलग जीवों की अपेक्षा किसको क्या कहना उसकी बात उन्होंने बता दी। वो यानी जीवों की अपेक्षा उनके श्रुत ज्ञान के ही नाम बताए। इनके विषय में अब जो अलग अलग जो उन्होंने श्रुत ज्ञान के भेद बताए हैं, नहीं समझे कौन से, मैंने ग्रंथ सम का अर्थ करने की बात बताई थी, वो आपने किया घोष सम सेकंड पेज पर है ना, आगे के पेज पर है। क्या लिखा है उसमें, देखो आपकी कुछ कंफ्यूजन हो रही है। मिल गए या नहीं मिले, हाँ। 9 प्रकार के उन्होंने आगम बताए, या दूसरी भाषा में 9 प्रकार के श्रुत ज्ञान बताए। इन्हें 9 प्रकार के अलग अलग जीवों की बुद्धि के भी भेद है ना, श्रुत ज्ञान के भेद बताए। अब ये जो अलग अलग बताए उसके विषय में वाचना, पृच्छना, प्रतिच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षण, स्तव, स्तुति और धर्म कथा के भेद से 8 प्रकार का उपयोग होता है, है? पहले तो आगम 9 प्रकार के और उपयोग 8 प्रकार का बताया। उनमें से अन्य के लिए व्याख्यान करना वाचना है, उसमें अनिश्चित अर्थ को समझने के लिए प्रश्न करना पृच्छना है। यानी सामने वाला कितना जानता है उसके लिए नहीं, समझने के लिए। आचार्य जिन अर्थों का कथन करते हो उनका सुनना प्रतीक्षणा है। जाने हुए अर्थ का हृदय से पुनः पुनः विचार करना परिवर्तन है। सूत्र के अर्थ का श्रुत के अनुसार चिंतन करना अनुप्रेक्षण है। अनु यानी टू फॉलो, ऐसा होता है ना, सूत्र के अनुसार उसका चिंतन करना, हाँ। अनुप्रेक्षण। फिर समस्त श्रुत ज्ञान को विषय करने वाला उपयोग स्तव कहलाता है। वो एक अंग या एक पूर्व को विषय करने वाला उपयोग स्तुति कहलाता है। ये भगवान की स्तुति, ऐसा अर्थ नहीं लिया उसका। उपयोग उसमें पूरे श्रुत ज्ञान में लगाया इस तरह। तथा वस्तु और अनुयोग द्वार आदि को विषय करने वाला उपयोग धर्म कथा कहलाता है। ये वस्तु और अनुयोग द्वार समझते हैं? पहले हमने श्रुत ज्ञान के भेद देखे थे, अक्षर श्रुत ज्ञान के। कौन कहना चाहता है? पर्याय पर्याय समास तो अनक्षरात्मक होते हैं। आगे के बताएंगे?
अक्षर अक्षर समास,
अक्षर अक्षर समास,
शब्द शब्द समास,
पद पद
समास, पीछे
संगात संगात समास, प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति समास, फिर उसके बाद अनुयोग अनुयोग समास, फिर प्रावृत प्रावृत हो गया था, फिर प्रावृत आया था, फिर उसके बाद वस्तु
प्रावृत 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 और पीछे
वस्तु पूर्व,
वस्तु वस्तु और पीछे पूर्व
पूर्व। तो यही कहते हैं आदि विषय करने वाला उपयोग धर्मकथा कहलाता है। इत्यादि जितने उपयोग है उनमें यह भाव है ऐसा समझकर, वो भाव आगम की बात है, जितने उपयुक्त भाव होते हैं वह सब आगम भाव बंध है। यानी वहां आगम के भेद और उपयोग के भेद ये सबको मिलकर और बंध के बारे में उसकी बात है, तो आगम भाव बंध कहा। यानी वो उपयोग वाला जीव को ही भावबंध कह दिया है। ये पढ़ लेते दो सूत्र। जो सो नो आगम दो भावबंधो नाम सो दुविहो, जीव भावबंधो चेव अजीव भावबंधो चेव। आगम भावबंध की बात हो गई अभी। नो आगम भावबंध दो प्रकार का है, जीव भाव बंध और अजीव भाव बंध। इस तरह दो प्रकार का ही नो आगम भाव बंध है, क्योंकि जीव और अजीव इन दो भेदों के सिवा नो आगम भाव बंध नहीं पाया जाता। जो सो जीव भाव बंधो नाम सो तिविहो, विवाग पच्चयो जीव भाव बंधो चेव, अविवाग पच्चयो जीव भाव बंधो चेव, तदुभय पच्चयो जीव भाव बंधो चेव। इन्हें जीव भाव बंध तीन प्रकार का है। इन्हें आगम से संबंधित नहीं है, अन्य की बात है। विपाक प्रत्येक जीव भाव बंध, अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध और तदुभय प्रत्येक जीव भाव बंध। इस प्रकार तीन प्रकार का ही जीव भाव बंध है, क्योंकि अन्य चौथा जीव भाव बंधन नहीं है, जीव भाव नहीं पाया जाता। अब तीन जो नाम बताए उसका अर्थ बता रहे। कर्मों के उदय और उदीर्णा को विपाक कहते हैं, और विपाक जिसका जिस भाव का प्रत्यय अर्थात कारण है, यानी कर्मों का उदय यानी विपाक जीव के जिन भावों का कारण है, कर्म के निमित्त से होने वाले भाव। देखो, विपाक जिस भाव का प्रत्यय अर्थात कारण है उसे विपाक प्रत्ययिक जीव भाव बंध कहते हैं। कर्मों के उदय और उदीर्णा के अभाव को अविपाक कहते हैं। तो अविपाक कब कहेंगे? कर्मों के उपशम और क्षय को अविपाक कहते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अविपाक जिस भाव का प्रत्यय अर्थात कारण है उसे अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध कहते हैं। कर्मों के उदय और उदीर्णा से तथा इनके उपशम से जो भाव उत्पन्न होता है उसे तदुभय प्रत्येक जीव भावबंध कहते हैं। विशेषार्थ, यहाँ जीव भावबंध के तीन भेदों के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। विपाक का अर्थ उदय और उदीर्णा है, अविपाक का अर्थ उपशम और क्षय है तथा तदुभय का अर्थ क्षयोपशम है। इसमें देशघाती स्पर्धकों का उदय और उदीर्णा रहती है तथा सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय रहता है, उसको क्षयोपशम कहते हैं। क्षयोपशम शब्द द्वारा अनुदय ही कहा गया है, क्षय अर्थात अनुदय ही उपशम, ऐसी उसकी व्युत्पत्ति है। तदुभय में विपाक और उपाक दोनों का ग्रहण हो जाता है, किंतु क्षोपशम शब्द द्वारा उदय और उदीर्णा अविवक्षित रहते हैं, अभिप्राय दोनों का एक है। अब हम यहाँ रुकते हैं, इसके और उदाहरण देके समझाएंगे और विस्तार से। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नम सदा देत हो। मैं